ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਅਗੰਮੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਉਹ ਜੋ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ? ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ। ਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ, ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ, ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ। ਅਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ। ਖੰਡ ਅਖੰਡ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਅਖੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਖੰਡਿਤ ਖੰਡ ਜੋ ਟੁਕੜੇ ਨੇ, ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਖੰਡਿਤ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਖੰਡ ਜੋਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਖੰਡਿਤ ਨੇ ਪਰ ਸਾਗਰ ਅਖੰਡ, ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਨਿਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਪੰਖੀ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੰਡਿਤ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਟੁਕੜਿਆਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਿੱਸੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਲੜੀਵਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਖੰਡ, ਜੋ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਮਗਰ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਖੰਡ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਖੰਡ ਜੋਤੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵਾਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਲਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਖੋਜੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਉਂਝ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਸੁਰਤ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਈ ਉਹਦਾ ਵਾਸਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ ਕੋਈ ਖਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਸੱਤਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਬਈ ਉੱਥੇ ਹੂਰਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਗੂਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਪੈ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਹਿੰਦੂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿੱਚ ਕੰਚਨ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੇ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੜਤ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਪਛਰਾ ਨੇ, उत्थे चित्र गुप्त बैठा है, उत्थे एक बहुत वड्डे सिंघासन ते परमात्मा बैठा है, अणगिणत देवी देवते उहदे आले दुआले बैठे ने। इस तरह की व्याख्या बैकुंठ की मिलती है, इस तरह की व्याख्या जन्नत की मिलती है, जो इस्लाम ने की है, जो सनातन मत ने की है। गुरु नानक ने ऐसा कतई नहीं आखिया कि परमात्मा कोई मनुख की तरह किसी सिंघासन ते बैठा। और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते बिल्कुल इनकारी ने कि परमात्मा कोई मनुख की तरह है भी। सो किम मानस रूप कहाए, सिद्ध समाध साध कर हारे, क्यों न देखन पाए। कलगीधर पातशाह का कहना है उसनु मनुख की तरह किस तरह आखोगे, मनुख का जन्म है फिर मनुख मर जाता है। जे ओ मनुख की तरह है तो फिर उसके मां बाप जरूर होंगे, जे ओ मनुख की तरह है तो फिर वह जमया होगा, जे ओ मनुख की तरह है तो फिर मरेगा, क्योंकि जिदे मां बाप ने उदा जन्म है ते जिदा जन्म है उदा मरना है, जिसका जन्म है उदी जात पात भी है। तो नहीं, परमात्मा एक शक्ति है, उस शक्ति का जिहड़ा बोध होंदा है मनुख नूं, उस शक्ति तक जिहड़ी मनुख की पहुंच आउंदी है वह उदों ही आउंदी है जद मनुख पूर्ण रूप विच सचियार हो जाता है। ये सवाल है क्यों सचियारा होइए, क्यों कूड़े टुटे पाल, किसी वक्त इस गल नूं खोलांगे। मनुख जब सचियार हो जाता है तो सच दे लीन हो जाता है। इनू कहने ने सजाती मेल हो सकता है, विजाती मेल नहीं होता। रोशनी विच होर रोशनी समा सकती है, पर रोशनी ते अंधेरे का मेल नहीं है। तुसी ये आखो इस गुरुद्वारा हाल विच एको ही समय विच रोशनी भी रखनी है, अंधेरा भी रखना है, गल मुश्किल होगी। दोवें नहीं रह सकते, या अंधकार रहेगा या रोशनी रहेगी, क्योंकि रोशनी प्रकाश ते अंधेरा दो वर्ग विपरीत ने, विजाती ने, सजाती नहीं ने। इसे तरीके नाल दुध दे च होर दुध मिला सकते हैं, दुध ते शराब का कोई मेल नहीं। जे दोवां नूं मिलाया दुध दुध नहीं रहेगा, शराब शराब नहीं रहेगी। सजाती मेल हो सकता है, विजाती मेल नहीं होता। सुगंधी विच होर सुगंधी जोड़ी जा सकती है, सुगंधी ते दुर्गंधी का कोई मेल नहीं है। इस वास्ते कहने सच दे ते सच लीन हो सकता है, सच ते झूठ का कोई मेल नहीं है। सच दे च झूठ नहीं समा सकता, झूठ दे च सच नहीं समा सकता, सच दे च सच समा सकता। परमात्मा की है सच, ते हुण मनुख सच बन जावे तो सच दे च सच दा मिलाप हो जाता है, सच दे च सच लीन हो जाता है। परमात्मा नूं गुरु नानक ने सच आख्या, वो सच है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी ही सच, वो ते सच है। इस वास्ते आपां जिस अस्थान ते बैठे हां इसनूं कहने सत संग, उन्हां बंदियां दा इकट्ठ जो सत दी संगत करन आए ने, जो सत नाल जुड़न आए ने, जो सच दी संगत करन आए ने। ते गल बड़ी औखी है सच दी संगत करनी, सच दे नेड़े आना। हुण सच दे नेड़े सुरत आवेगी, शरीर नहीं, इतनी मैरस करते हैं। ध्यान ने नेड़े आना है सच दे, तो उस परिपूर्ण परमात्मा का वासा किथे है, साहिब कहने सच दे च। उन्हूं कह दिता है सच खंड वसे निरंकार, पर हुण असी सच खंड तक पहुंच सकीए की साधना करिए, की करिए। और ये जीवदियां जी सच खंड तक पहुंचना ये गल वखरी है। कोई मर जावे ते लोकी कहने बई सच खंड वासी, ये बहुत मतलब गलत प्रयोग कीता है। मजबूरी है बई इंज ना आखिए, किधरे नरक वासी हो गया तो स्वर्ग वासी हो गया, सच खंड वासी हो गया। इस तरह की असी गल करदे हां सिर्फ दिल नूं तसल्ली देण वास्ते, सिर्फ घर वालियां नूं तसल्ली देण वास्ते, वरना जीवदियां जी जो सच खंड वासी नहीं होया मर के कोई सचखंड वासी नहीं होता। जो जीवदियां जी सच तक नहीं पहुंचया उन्हें मर के की खाक पहुंचना है। जिड़ी चीज जीवदियां जी नहीं प्राप्त हुई मर के किस तरह प्राप्त होवेगी। बैणी कहे सुनोरे संतो मरण मुकत किन पाई। मर के मुक्ति किसनु मिलती है? किसे नु भी नहीं। जीवदियां जी जड़ी चीज नहीं लगी मर के की खाक लभनी है। इस वास्ते भगत नामदेव जी महाराज ते साफ कहंदे ने मुए हुए जो मुक्त देओगे मुक्त न जाने कोयला। जे तू मर के मुक्ति देने ओ मुक्ति किसने वेखी है? नहीं चाहिए सानू। तू जीवदियां जी मुक्ति दे इनू कहंदे जीवन मुक्त। भई ये बंदा जीवन मुक्त हो गया। मुक्त कहंदे ने स्वतंत्र आजाद। किसे हद तक देखिए शरीर नू बीमारियां दे बंधन ने मन नू विकारां दे बंधन ने गलत विचारां दे बंधन ने ते आत्मा नू जन्म ते मरण दे बंधन ने मुड़ मुड़ के शरीर दे च पैना ये बंधन ने। कहत कबीर जोहर ध्यावे जीवत बंधन तोरे। कबीर कहने जो सिमरन करता है ते सच तक पहुंच जाता है उदे बंधन टूट जाते हैं आजाद हो जाता है स्वतंत्र हो जाता है मुक्त हो जाता है। जिसनु असी आजादी कहने संस्कृत विच कहने मुक्ति। ए भाई मुक्ति नु प्राप्त हो गया इनु आजादी मिल गई है इनु स्वतंत्रता मिल गई है। तो बंधन की है शरीर नु बीमारियां दे बंधन ने मन नु गलत विचारां दे बंधन ने आत्मा नु जन्म ते मरण दे बंधन ने। सिमरन करन दे नाले तिन्ने ही बंधन टूट जाते हैं। शरीर देचो बीमारियां दे बंधन गए मन देचो गलत विचारां दे बंधन गए ते आत्मा जन्म ते मरण दे बंधन तो रहत हो गए। मनुख पूर्ण तौर ते स्वतंत्र हो गया आजाद हो गया मुक्त हो गया। कहत कबीर जोहर ध्यावे जीवत बंधन तोरे। गुरु अर्जन देव जी महाराज का फरमान रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटाने। जो हरी दा जन है सिमरन करदया करदया जो पहुंच गया मुक्ति तक पहचान की होवेगी रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटाने। शरीर दे च रोग नहीं आउणगे मन दे च सोग नहीं आउणगे आत्मा दे च जन्म ते मरण नहीं होवेगा। मन विच सोग है शरीर विच रोग है जन्म मरण दा बंधन है। खिमा करनी ए हरी दा जन नहीं है अजे भगत नहीं बने अजे गुरसिख गुरमुख नहीं बने। तो खैर हुण मुख्तसर मैं अर्ज करा मनुख ने पहुंचना है सच तक ते सच निर्वैर है सच निर्भव है सच अकाल है सच दयाल है सच अजोनी है सच सैभंग है। सच दी बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या। खैर उस सच तक पहुंचना है किवें पहुंचिए की साधना है? तो मैं थोड़ा जिहा जगत दे रहबरी जड़े पुरश ने महापुरश ने उन्हां दे कलाम उन्हां दे बचना दा थोड़ा जिहा अध्ययन कीता है कि सच तक पहुंचण दे उन्हां ने रस्ते की दसे ने किवें पहुंची है। ते फिर मैं लफ्ज दोहरा दिया जमीन दे उत्ते बने बनाए कोई रस्ते नहीं जिहदे उत्ते तुसी चल के पहुंच जाओ परमात्मा दे देश ईश्वर दे देश। इस तरह का कोई रस्ता नहीं है कि हुण पहुंच जाइए। क्योंकि अगर जमीन दे उत्ते कोई रस्ता बनया तो फिर ये परमात्मा निराकार नहीं होगा उत्ते आकार वाला होगा। उस तक पहुंचनी है साड़ी सुरत उस तक पहुंचना है साड़ा ध्यान। किवें पहुंचिए उस निराकार दे देश तक? साहबां दी बाणी कहंदी है बने बनाए ते कोई रस्ते नहीं है बिल्कुल कोई रस्ता नहीं। एक शहर तो दूजे शहर जाण वास्ते बकायदा सड़कां बनी हुई है रस्ते बने हुए हैं। एक थां तो दूसरे थां चले जाइए रस्ते बने हुए हैं। पर पहुंचिए सच तक परमात्मा तक बना बनाया कोई मार्ग नहीं है बना बनाया कोई रस्ता नहीं। सतगुरु दी बाणी कहंदी है चलोगे ते रस्ता बनेगा उंज कोई रस्ता नहीं। एकाग्रता बख्शनी। ਬਈ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮਾਂਝੇ ਮਾਛਲੋ ਮਾਰਗ ਪੇਖਣੋ ਨਾ ਜਾਈ, ਜਿਉਂ ਆਕਾਸ਼ੇ ਪੰਖੀ ਅਲੋ ਖੋਜ ਨਿਰਖੋ ਨਾ ਜਾਈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਦੇ ਚ ਮੱਛੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਜਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਣਾ ਬਣਾਇਆ ਰਸਤਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਉਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ, ਉਂਝ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਮੀਲੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ। ਤੋ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਰਗ ਬਣਦਾ, ਉਂਝ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ, ਉਂਝ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਅੰਦਰ ਮੀਨ ਫਿਰੰਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਅਲਖ ਹੈ ਜਿਉਂ ਆਕਾਸ਼ੇ ਪੰਖ ਉਡੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ, ਉਂਝ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਜਿਉਂ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ, ਉਂਝ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਪੋਗੇ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ, ਉਂਝ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਪੁੱਛਤ ਹੈ ਪਥਕ ਤੇ ਮਾਰਗ ਨਾ ਧਰੇ ਪਗ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਕੈਸੇ ਬਾਤਨ ਸੇ ਜਾਈਏ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣਦਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨੁੱਖ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹੇ, ਚੱਲੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤੋ ਚੱਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਪਣਾ। ਜਪਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਉਂਝ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਪੇ, ਜਪੇ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਣੇਗਾ, ਉਂਝ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਣਾ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਉਂ ਬੰਦਾ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਸਦੀ ਸੁਰਤ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਔਰ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਗ ਬਣਦਾ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੁਭਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਕੁਛ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਪਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੂਲ ਬਿਨਾ ਸ਼ਾਹਾਂ ਕਤ ਆਏ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੂਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਖਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਬੁਨਿਆਦ ਪਹਿਲੇ ਮਕਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੇ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਭਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਕਾਨ ਉਸਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੂਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਖਾਂ ਫੁੱਲ ਫਲ ਪੱਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਜੜਾਂ। ਜਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਹੈ, ਸੂਝ ਸਮਝ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਆਨੰਦ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਜਪਣਾ ਪਹਿਲੇ, ਜਾਪ ਪਹਿਲੇ, ਜਾਪ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਪਹਿਲੇ। ਜਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ। ਇਹ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਪ ਕਰ ਸਕੇ, ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਕੀਰਤਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਪ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ, ਜਪ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਦੇਖੇ ਨੇ 40-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਐਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਪਏ ਨੇ, ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਾਰਨ ਸਭ ਕੁਛ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਚੇਤਪਣੇ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸਮਝੀ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। 5-10 ਸ਼ਰਾਬੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਬੈਠ ਗਏ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੱਗੇ ਚੱਪੂ ਚਲਾਣ, ਬਈ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਗ ਰੰਗ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਸਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਨੌਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਪੂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਚੱਪੂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਫੁੱਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਚੱਪੂ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਬਾਹਾਂ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ, ਚੱਪੂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਨੌਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇੜੀ ਅੱਗੇ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਬਖਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੱਪੂ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੇੜੀ ਬੰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਸੰਗਲ ਤੇ ਖੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਸੇ ਤੇ ਖੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਚੱਪੂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਲੋਕੀ ਗਿਆਨ ਦੇ, ਲੋਕੀ ਦਾਨ ਦੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਚੱਪੂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਗਲਤ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਲੁੱਖ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਬੇਚੈਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ, ਬੇਚੈਨ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇੱਥੋਂ ਅਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਉਹ ਸੂਝ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰੇ ਹੀ ਨਾ, ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਕਈ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ। 20-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਕੱਖ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਖੈਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੱਚ ਤੱਕ, ਤੇ ਸੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮ ਰਸ ਹੈ। ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਣਾ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ, ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਣੇਗਾ, ਉਂਝ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਤੋਗੇ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਣੇਗਾ, ਉਂਝ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਅਗਮ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਅੰਦਰ ਮੀਨ ਫਿਰੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਤ ਅੱਗੇ ਚਲੇਗੀ, ਧਿਆਨ ਅੱਗੇ ਚਲਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਧਿਆਨ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਅੱਗੇ ਧਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਅੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਾਂਹ ਕੂ ਤਰਾਂਗ, ਪਿੱਛਾ ਫੇਰ ਨਾ ਮੋੜੜਾ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਜ ਇਹ ਆਵਾਰ, ਬੌਰ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜਨਮਣਾ। ਅੱਗੇ ਵੇਖ, ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲ, ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਵੇਖਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸੁਰਤ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਿਵਾਉਣ ਦੀ ਤਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚਾੜਨਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਬਾਓ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਰਤ ਸਾਡੀ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਭੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨਿਵਾਉਣ ਦੀ ਤਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਘਰ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਹੈ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਆਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਆਸਰਾ ਹੈ ਜਪ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਾਪ ਕਰ ਸਕੇ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਪਤਾ ਮਹਾਨਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕੋਈ ਰਸ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕਈ ਜੁੜਨਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲਿਆਂ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਸਤਸੰਗ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਕੱਲਿਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋਗੇ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇਗਾ ਰਸ ਬਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇਗਾ ਆਨੰਦ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਕੇ ਆਸਰਾ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਸੰਗੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਸੱਤ ਨਾਲ ਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਜੋ ਸੱਤ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗੀ ਨੇ, ਸਾਧਕ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ ਕੋਈ ਸਾਧਨਾ ਕੋਈ ਢੰਗ, ਤੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਸਨ, ਇੱਕ ਢੰਗ ਸਨਾਤਨੀ, ਸਨਾਤਨੀ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ। ਸਨਾਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਉਲਟ ਸਨਾਤਨ ਭਇਆ, ਇਹ ਮਨ ਉਲਟ ਕੇ ਹੁਣ ਸਨਾਤਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਪੁਰਾਣੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਦਿ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ। ਤੋ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਦਿਕ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਗਾਲਬਨ 4000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਧਰਮ। ਤੋ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਮਤਾਂਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਫਿਰ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਾਂਡ, ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਕਰੀਏ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਫਿਰ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਾਂਡ, ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ। ਇਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਹੱਕ ਤੱਕ, ਹਕੀਕਤ ਤੱਕ। ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੱਚਾਈ, ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਖੁਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੱਕ ਹੈ, ਬਾਉ ਸੱਚ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਕਰੀਏ ਕੀ? ਤੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰੀਅਤ, ਫਿਰ ਤਰੀਕਤ, ਫਿਰ ਮਾਰਫਤ, ਫਿਰ ਹਕੀਕਤ। ਇੱਕ ਬਿਖੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਛੇੜ ਬੈਠਾ, ਜੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਹੋਵੋ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਚਲੋ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਵਕਤ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵਕਤ ਸਫਲ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਂ ਸਫਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ, ਵਕਤ ਪਾਸ ਕਰਦੇ, ਸਮਾਂ ਸਫਲ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਫਲ 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 ਭਈ ਯਾਤਰਾ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਮਿਲੇ ਸਾਰਾ। ਤੋ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹਕੀਕਤ ਤੱਕ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰੀਅਤ, ਫਿਰ ਤਰੀਕਤ, ਫਿਰ ਮਾਰਫਤ, ਫਿਰ ਹਕੀਕਤ। ਹਿੰਦੂ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਪੜਾਓ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤਿੰਨ ਪੜਾਓ ਨੇ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਰ ਪੜਾਓ ਨੇ ਪੰਜਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਚਾਰ ਪੜਾਓ ਨੇ ਧਰਮ ਖੰਡ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਸਰਨ ਖੰਡ, ਕਰਮ ਖੰਡ, ਇਹ ਚਾਰ ਤੇ ਨੇ ਪੜਾਓ। ਸੱਚ ਖੰਡ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਸੱਚ ਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਓ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਰ ਪੜਾਓ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਧਰਮ ਖੰਡ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਸਰਮ ਖੰਡ, ਕਰਮ ਖੰਡ, ਇਹ ਚਾਰ ਪੜਾਓ ਨੇ। सचखंड मंजिल है, सचखंड तक असी पहुंचना है। दो पड़ाव ने तीसरी मंजिल है, ऐसा हिंदू ऋषि मुनि कहते हैं। कर्म कांड उपासना कांड ये दो पड़ाव ने, ते ज्ञान कांड मंजिल है। तीन पड़ाव ने शरीयत तरीकत ते मार्फत, हकीकत मंजिल है, हकीकत तक पहुंचना है। हुण ज्ञान नू प्रकाश नू नूर नू ही ईश्वर क्यों मनिया? प्राचीन हिंदू ऋषि मुनिया ने कहा है कि परमात्मा एक प्रकाश है और कुछ नहीं, एक चानना है। उंज ते मुहम्मद साहब का भी कहना सी वो एक नूर है, एक नूर है, एक चानना है, उस चानने तक पहुंचना है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने परमात्मा के दो रूप मने ने, वो नूर है, वो शब्द है, वो धुन है, अनाहद नाद है। जब कोई मनुख परमात्मा तक पहुंचता है उसके अंदर प्रकाश हो जाता है और उसके अंदर अनहद नाद चल पैंदा है। अनहद बाणी नाद वजाया, सुन समाद अनहद तै नाद, कहन न जाई अचल बिस्माद। उस दे अंदर अनहद नाद वज पाएगा। फिर नाम जपत कोट सूर उजारा, दिन से भरम अंधेरा, उसके अंदर एक प्रकाश हो जाएगा, उसके अंदर एक चानना हो जाएगा। ये दो हालत उसके अंदर वापरन गिया। क्यों? कि परमात्मा नाद है, परमात्मा प्रकाश है। कनन सौ सियाने इको मत, जगत दे तमाम रैबरी पुरुष इस गल नाल सहमत ने कि संसार की उत्पत्ति शब्द तो हुई है, नाद तो हुई है। मोहम्मद साहब का कहना है कि कुन नाम की एक धुन हुई, संसार बन गया। हिंदू ऋषि मुनि कहते ने कि ओम की धुन हुई, ओम ते जगत बन गया, संसार बन गया। उत्पत पर लो शब्दे हो गए, साहब कहन उत्पत्ति ते परले शब्द तो हो रही है, धुन तो हो रही है, नाद तो हो रही है। कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ, लखा जिंदगियां दे दरिया चल पैने शब्द तो, नाद तो। तो मोहम्मद साहब भी ऐसे ही कहते ने, खुदा एक शब्द है, एक धुन है, और उस धुन का रूप रंग दसिया है कुन। जैनी भी कहते ने ओंकार की धुन हुई, संसार बन गया, जगत बन गया। तो पहुंचना है शब्द तक, पहुंचना है प्रकाश तक, की करिए, केड़ी साधना करिए, किस तरह की साधना करिए? वख वख रैबरी पुरुषों ने जो कुछ आखे है, ते फिर गुरु नानक देव जी महाराज ने जो कुछ आखे है वो मैं थोड़े सामने रखना। हिंदू ऋषि मुनि साफ कहने ने प्रथम कर्म कांड, पहले मनुख कर्म करे, ते कर्म शरीर नाल होंगे, उपासना मन नाल होवेगी, ते ज्ञान प्रकाश जेड़ा है वह आत्मा का हिस्सा है। कुछ शरीर नाल बंदा करे, शरीर नाल की करे? तीर्थां दा रटन करे, हवन करे, यज्ञ करे, वर्त रखे, बहुत कुछ कर्म कांड उन्हां दा लंबा है। गिनती करांगे ते हजारां तरह का कर्म कांड है जो सनातन जगत विच मौजूद है। ते शरीर नाल करदियां करदियां जो बंदा थकेगा, तो दूसरा तरीका उन्होंने फिर दस्या है, दूजी स्टेज उपासना कांड, उप आसन, अपने आप दे नाल आसन जमा के बैठना, अपने आप नाल बैठना। ते लफ्ज़ मैं फिर दोहरा दिया, अपने आप नाल बंदा नहीं बैठ सकता। उप आसन का मतलब है अपने आप दे नाल आसन लगाना, अपने आप दे नाल बैठना नहीं बैठ सकता मनुख। मनुख दूजियां नाल बैठ सकता है, मनुख अपने आप दे नाल नहीं बैठ सकता। कभी बगौर मुताला करके वेख लेना, मनुख दोस्तों विच बैठ सकता है, मित्रां विच बैठ सकता है, संसार नाल बैठ सकता है, अपने आप दे नाल नहीं बैठ सकता। कारण कि अपने आप दे नाल कदी बैठिया ही नहीं, इनू पता ही नहीं, बोध नहीं। जो अपने आप दे नाल बैठने की कोशिश करता है तो दुख कलेश पुरानियां बेचैनियां सामने आ जांदियां। इस वास्ते अपने आप दे नाल जिहड़ा बैठना है मनुख का, यह बहुत औखा है। तो उन्होंने कहा है दूसरी स्टेज है मनुख अपने आप दे नाल बैठे। हुण अपने आप दे नाल बैठे तो कुछ आसरा चाहिए, तो वह भी कहने किसी मंत्र का रटन करे, या दीवे विच ध्यान जोड़े, कई विधियां उन्होंने दसिया ने, या मस्तक विच ध्यान जोड़े, सहजे सहजे उपासना हो जाएगी, सहजे सहजे उसनू अपने आप दे नाल बैठन दी जांच आ जाएगी। ते फिर जे वो अपने आप दे नाल बैठ भी गया तो फिर की होवेगा? वो कहिंदे फिर ज्ञान हो जाएगा, फिर प्रकाश हो जाएगा, फिर वो ज्ञान कान तक पहुंच जाएगा। परमात्मा की है ज्ञान, तो वह कहने ज्ञान तक पहुंचद सुख मिल जाएगा, प्रकाश तक पहुंचद आनंद मिल जाएगा, प्रकाश तक पहुंचद सारिया खुशियां झोली में पै जाएगियां, क्योंकि परमात्मा प्रकाश है, परमात्मा ज्ञान है। इस्लाम ईसाई ते यहूदी मत जड़ा है, एक कहता है बंदा जड़ा दुखी है ना, दुखी ये इस वास्ते है कि बंदा पापी है, हर पाप दे चों दुख पैदा होता है। ते जितने पाप वधदे ने उतने दुख वध जांदे ने। लवज किधरे तर्क ना समझ लेनी, ईसाइयत यहूदियां दे च और इस्लाम दे च बहुत सारियां गल्लां बिल्कुल बचियां वालियां ने। और धार्मिक तौर पर जिहड़ा बजुर्ग बंदा है, सूझवान बंदा है, उस वास्ते सारियां गल्लां बचियां वालियां ने, कोई खास नहीं है। जिन्होंने भी लिखियां ने कोई बहुत दूर दृष्टि नाल नहीं लिखिया। ते मेरे मुताले विच ए आया है कि बाइबल हजरत ईसा तो 500 साल बाद लिखी गई, 500 साल। ब्रह्मा दे कंठ तो जड़े वेद निकले वो 1500 साल बाद लिखे गए, उस वक्त नहीं लिखे गए। जिस वक्त ब्रह्मे ने उच्चारण किया सी उदों कागज भी नहीं सी, लिखण दी कोई प्रवृत्ति भी नहीं सी, लिखण दा कोई ढंग भी नहीं सी। मुहम्मद साहब दे कंठ तो जो कुरान दियां आयतां नाजिल होईयां ने 200 साल बाद लिखियां गईयां, जदों मुहम्मद साहब आलमे वजूद दे सन कागज नहीं सी। कहिंदे ने उन्होंने खजूर दे पत्तियां दित्ते वो आयतां लिखियां, खजूर दे पत्तियां दे वो पत्ते बकरी खा गई, कुरान नूं रूप फिर 200 साल बाद दित्ता गया। ब्रह्मे दे कंठ तो जिहड़े वेद निकले, वेद बाणी निकली, उन्हों ऋषि मुनिया ने स्रोतियां ने याद कर लिया। वेदा नूं कहिंदे ने श्रुति, सुनिया होया ज्ञान, सुन के याद किया गया, सुन के बुद्धि विच रखिया गया, चेते विच रखिया गया। जदों लिखण दा ढंग प्रगट हो गया तां फिर भोज पत्रां दे उत्ते लिखिया गया। हिंदुस्तान विच इक दरख्त है जिहनूं चौड़े चौड़े पत्ते हुंदे ने, ते उहदे पत्ते काफी मुद्दत तक रखे जा सकदे ने, खराब नहीं होंदे, टुटदे नहीं, उहनूं भोज पत्र कहिंदे ने। उहनां भोज पत्रां दे उत्ते वेद बाणी लिखी गई और लिखी गई 1500 साल बाद, पीढ़ी दर पीढ़ी सुन के लोग याद करते सन, पीढ़ी दर पीढ़ी कुरान दियां आयतां याद कीतियां गईयां 200 साल बाद लिखियां गईयां, पीढ़ी दर पीढ़ी हजरत ईसा का जोड़ा ज्ञान से याद रखा गया, 500 साल बाद लिखा गया। ते हुण मैं अर्ज कर दिया एक गल अज सुनाई जाए ते कल वो लिखी जाए फर्क पै जाएगा। मेरे हाथ दे च गुलाब का फुल हो गए ते मैं दूसरे नूं दे देवा, दूसरा तीसरे नूं दे देवे, तीसरा चौथे नूं दे देवे, ते फिर 100 हत्थां विच जावे ते फिर मेरे कोल वापस आवे ये फुल ओ नहीं होवेगा, फर्क पै जाएगा। इनू सैकड़े हत्थां ने छोया है, तो हथ दी छो नाल कुछ दिता है ते कुछ लै लिया। एक बंदे दी गल जब दूसरे तक पहुंचती है ना, ते दूसरे तो तीसरे तक पहुंचती है, फर्क पै जाता, लाजमी फर्क पै जाता है। और फिर तीसरे तो चौथे तक पहुंचे, चौथे तो पंजवें तक पहुंचे, पंजवें तो छेवें तक पहुंचे, जब 100वें बंदे तक वह गल पहुंचेगी तो वह उसनू लिखेगा, गल का असली तत्व ही खो जाएगा। बगौर मुताला करके भी तुसी वेख लेना, सवेरे तुसी किसे तो गल सुन लो ते शाम नू जब तुसी किसे नू सुनाओगे कुछ फर्क है, ते जिसने सुन के अगां किसे नू सुनानी है फिर फर्क पै जाएगा। इन फर्क पैंदा ही जाएगा, पैंदा जाएगा, असली गल खो जाती है। हजरत ईसा दे असली बोल खो गए, 500 साल बाद लिखे गए। इस वास्ते बाइबल दियां कई गल्लां अज सच्चाई ते पूरियां नहीं उतरदियां। उत्थे लिखिया है जमीन जिहड़ी है ये चपटी है, ये ते गोल है। उत्थे लिखिया जमीन रुकी हुई है, साकन है, ये आले दुआले सूरज घूमता है। अज साइंस ने सिद्ध कर दिता है गल ही उल्ट है। सब तो पहले जिन्होंने थोड़ा जिहा इतिहास का मुताला किया है, गलीलियो ने यह गल आखी भी नहीं जमीन घूम रही है, आपनू पता होगा उन्हों पकड़ के जेल में पा दिता गया। तू बाइबल तो उल्ट गल कहना, तू हजरत ईसा नालों वड्डा हो गया और पता है उसनू की आख्या गया, जे कल सूरज निकलण तो पहले तू माफी ना मंगे तो तेनों सजाए मौत दिती जाएगी। 80 साल का यह बुढ़ा साइंसदान विज्ञानक सोची पै गया कि इन्हां मूर्खां ने मैनू मार देना है, एवें ही मार देना है, तो मैं भौं दे भा मर जावांगा, एवें खामा खा भंग दे भा। ते अजे जिंदगी दे कई राज मैनू पता ने, मैं जगत नू दसणे ने। उस विचारे ने सवेरे माफी मंग ली। अच्छा भाई मैं माफी मंगना, मैं नहीं कहिंदा, लेकिन असलियत यह है, उन्हें फिर भी कह दिता, असली गल यही है कि जमीन घूम रही है सूरज के इर्द गिर्द, यह साकिन नहीं, यह रुकी हुई नहीं है। और इस चक्कर दे चना पैना कि जमीन चपटी है, जमीन गोल है, यह भी उसने कहा। पर जे तुसी कहिंदे हो तो मैं माफी मंग लैना, मंग लैना। सच्चाई यह है क्योंकि मेरे माफी मंगण नाल भी सच्चाई रद्द नहीं होगी, मेरे माफी मंगण नाल भी सच्चाई उल्ट नहीं होगी, मैं माफी मंग लैना। उस बुढ़े साइंसदान ने विचारे ने माफी मंग ली, उन्हें आजाद ते कर दिता गया। लेकिन अज बच्चे बच्चे नु पता है वह ठीक कहिंदा सी, बाइबल गलत कहती है, वह ठीक कहिंदा सी। 500 साल बाद हजरत ईसा दे बोल लिखे गए तो फर्क ते पै जाना सी, कुछ मनुख ने अपनी तरफों जोड़ दिता, कुछ विचों खो गया। हिंदू ऋषि मुनिया ने जो ब्रह्मे के कंठ तो अमृतमयी ज्ञान निकलिया सी, चूंकि लिखा गया 1500 साल बाद, ऋषि वेद व्यास ने लिखे ने, वेद ब्रह्मा के उचारण किए ने ते लिखे ने व्यास ने। पंजाब जिहड़ा दरिया ब्यास लगता है ना, बिपास इसका पुराना ना है, इहदे कंढे ते बैठ के ऋषि व्यास ने वेद लिखे ने, ते व्यास दे नाम दिते इस दरिया का नाम व्यास है। और कहिंदे ने इसे खिते विच उहदा जन्म होया सी ऋषि व्यास दा, ते हिंदुस्तान दे ऋषि मुनिया विचों इह सिरमौर ऋषि है जिन्हें सब तो ज्यादा ग्रंथ लिखे ने। भविष्यत पुराण इसने लिखे है, गीता इसने लिखी है, महाभारत इसने लिखे है, वेद इसने लिखे ने, सारे ग्रंथ ऋषि वेद व्यास दे लिखे हुए ने जिहड़े हिंदुस्तान विच चोटी दे ग्रंथ ने। और ब्यास दरिया के कंडे ते बैठ के इसने लिखे ने, पता नहीं इसका पुराना ना की है इस दरिया का, पर ऋषि व्यास दे बैठन करके इसके कंडे विच झुग्गी बना के ते ग्रंथ लिखण करके इस दरिया का नाम ब्यास पै गया। हुण ब्रह्मा दे कंठ तो निकले सन वेद, ते 1500 साल बाद लिखे ऋषि व्यास ने, तो फर्क ते पै जाएगा। कुरुक्षेत्र के मैदान विच श्री कृष्ण के कंठ तो निकली गीता, ते सुनाई गई युधिष्ठिर नूं ते अर्जुन नूं, गालबन 100 साल बाद लिखी ऋषि व्यास ने, तो फर्क ते पै जाएगा। उस वक्त नहीं लिखी गई, 100 साल बाद लिखी गई, 1500 साल बाद वेद लिखे गए, 500 साल बाद बाइबल लिखी गई, 200 साल बाद कुरान लिखी गई। दुनिया विच इक्को एक ग्रंथ है जिहदे च वक्त का वक्फा नहीं है। इधर गुरु अर्जन देव जी महाराज उचारण पै कर दें, इधर भाई गुरदास जी लिखते गए। गुरु नानक ने अपनी बाणी आप लिखी सी, इहदे पुख्ता तवारीखी सबूत मौजूद ने। गुरु नानक दे कोलों बकायदा एक किताब आउंदी सी, भाई गुरदास जी उसका जिक्र कर देना, आसा हथ किताब कछ पूजा वांग मुसल्ला धारी। जब मेरे पातशाह जी गए ने बकायदा मक्के विच अरब देशों की यात्रा विच, साहब दे बगल विच एक किताब आउंदी सी, वह किताब की सी, बाद विच असीं उसनूं नाम दित्ता पोथी साहब, सोडियां दे कोल सी पोथी साहब, यह गुरु नानक दे कोल आउंदी सी, जिथे बाणी उतरदी सी आप नूं आप लिख लैंदे सी। ये पोथियां गुरु नानक तो बाद गुरु अंगद देव जी महाराज पास आईयां, फिर गुरु अमरदास जी महाराज पास आईया, फिर गुरु रामदास जी महाराज पास आईया, फिर इन्हां सारियां पोथियां नूं एक रूप दिता गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। इस बाणी विच वक्फा नहीं कोई 100 साल बाद लिखी गई होवे, 50 साल बाद लिखी गई होवे, 200 साल बाद लिखी गई होवे, इस तरह का वक्फा नहीं है। पोथियां नूं ते अपनी रचना नूं ते जिहड़ी भगत बाणी है, भगत बाणी इकट्ठी कीती सी गुरु नानक ने, इहदे भी इतिहासक सबूत मौजूद है। गुरु नानक ने समुचे देश का भ्रमण किया, जिथे जिथे जिहड़ी भगतां दी बाणी आप नूं मेल खांदी दिसी आपने एकत्र कर लई, क्योंकि प्रेरणा सारे जगत नूं देनी सी, सारे संसार नूं देनी सी। इह इक विश्व धर्म है गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, इत्थे सारे धर्मां दे बंदे बैठे ने, इत्थे स्वामी रामानंद ते परमानंद बैरागी ने, इत्थे जिहड़ा जयदेव बैठा है भगत जयदेव, इह गौर ब्राह्मण सी ते वैष्णो संपरदा दा संत सी। कबीर ने त्रिलोचन है, सदना है, सहनाई है, ये भी वैष्णो संपर्दा दे भगत है, और बाबा फरीद है, सूफी है, मुसलमान है। किसे हद तक ते सियाणे इंज भी कहिंदे ने कि ये जिहड़ा कबीर है, हिंदुस्तान विच बड़ी चर्चा चली इस गल दी, लिखती भी और उंज भी चर्चा, बई कबीर मुसलमान है, कुछ कहिंदे ने कबीर हिंदू है। हुण नाम जिहड़ा कबीर है ना, ये कबीर शब्द मुसलमान नहीं है, इस्लामी शब्द है। बई वड्डा सदना भी मुसलमान है, बीखण भी मुसलमान है, जिहदी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब दे च, कबीर भी मुसलमान है, फरीद भी मुसलमान है। सानू इन्ना ते पता है बई फरीद मुसलमान है, बाकी भी मुसलमान है, भीखण मुसलमान है, सदना कसाई मुसलमान है, कबीर मुसलमान है। हुण कबीर मुसलमान है, इहदे कोई पुख्ता सबूत चाहिए ने, तो पुख्ता सबूत किसी इतिहास विच लभण दी लोड़ नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखी ने। कबीर भी जानकारी करा रहे ने श्री रविदास जी महाराज, ते इक्को ही टाइम विच ये भगत होए ने सारे, कबीर रविदास नामदेव त्रिलोचन, ये सारे इक्को वक्त विच होए ने, क्योंकि ये भगत एक दूसरे का जिक्र अपनी बाणी विच करदे ने। कबीर अपनी बाणी विच जिक्र रविदास का करदा है, रविदास अपनी बाणी विच जिक्र कबीर का करदा है। एक उदाहरण दे के मैं अगे चला, कबीर का एक श्लोक है, श्लोकों विच, हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दोजक जाएंगे सत भाके रविदास। हुण श्लोक कबीर दा है, कबीर कहिंदे ने जिहड़ा रविदास है सच कह रहा है कि हरी जैसे हीरे नूं छड़ के जो मनुख व्यर्थ दी वासना विच जिंदगी बतीत करदे ने धक्के खाण दोजकां विच। हुण आखिया रविदास ने, ते रविदास दे बोल नूं कबीर अपने शब्दां विच ढालदे पैणे, बाणी कबीर दी है, ख्याल रविदास दा है। रविदास अपनी बाणी च कहिंदे ने, नाम देव कबीर त्रिलोचन सदना सहन करे, कह रविदास सुनोरे संतो हरजी ते सबे सरे। हुण शब्द रविदास दा है, रविदास जिक्र कबीर दा करदा है, और कबीर जिक्र रविदास दा करदे ने। इत्थों एक गल स्पष्ट हो गई, दोवें समकाली ने, इक्को वक्त दे चले, वरना एक ते ना लै सकदा सी, दोवें एक दूजे दा ना लैंदे, और ये सारे भगत एक दूजे का जिक्र करते हैं। जिहड़े भगत गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच बैठे ने, एक भगत दूसरे का जिक्र करता है, दूजे की गल करता है। तो श्री रविदास जी महाराज भगत कबीर की जानकारी कराने ने कि कबीर कौन है। एक पंक्ति थोड़े सामने रखा गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की, जाके ईद बकरीद कुल गऊ बद करे, मानिए शेख शहीद पीरा, जाके बाप ऐसी करी पूत ऐसी श्री, तेहूरे लोक प्रसिद्ध कबीरा। रविदास कहिंदे ने कबीर दा जन्म किथे होया, जाके ईद बकरीद कुल गौ बद करे, जिन्हां दे घर विच बकरीद मनाई जाती है, ईद मनाई जाती है, ते बकरीद वाले दिन गौआं वड़ियां जांदियां ने, जाके ईद बकरीद कुल गौ बद करे, मानिए शेख शहीद पीरा, शहीदां नूं मंदे ने, पीरां नूं मंदे ने, कबरां नूं मंदे ने, जाके बाप ऐसी करी, प्यो ते यही कुछ करदा सी, प्यो गऊआं वढदा सी, प्यो कबरां नूं पूजदा सी, प्यो शहीदां नूं मंदा सी, प्यो शेखां नूं मंदा सी, प्यो बकरीद मनांदा सी, प्यो ईद मनांदा सी, जाके बाप ऐसी करी पूत ऐसी सिरी, तेहूरे लोक प्रसिद्ध कबीरा, प्यो ते यही कुछ करदा सी ते पुत्र नहीं करदा। पुत्र बिल्कुल उल्ट है, प्यो तो बिल्कुल उल्ट है। तो इतनी गल तो स्पष्ट हो गई कि मुसलमान घराने विच कबीर का जन्म है,
गुरु ग्रंथ साहब की पंक्ति तो ही गल स्पष्ट हो गई, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी तो ही गल स्पष्ट हो गई कि जन्म इसका मुसलमान घराने च। बड़िया लंबिया चौड़िया सी कहानियां जोड़ियां इन्हें भी ब्राह्मणी की कुख तो जन्म होया सी, गंगा के तट तो छड़ गई, इन पालिया गया, बहुत लंबिया चौड़िया कहानियां। मैं इतनी अर्ज कर दिया जेड़ा इतिहास गुर शब्द से पूरा ना हो तो गलत है, कल्पना है। साडे कोल कसवटी मौजूद है, तो जिवें सोने नूं कसवटी ते परख लैंदे ने, असी हर इतिहास नूं गुरबाणी ते परखना है, फिर हर रस्मो रिवाज नूं भी गुरबाणी ते परखना है। जिस रस्म रिवाज की गुरबाणी तस्दीक नहीं करती वह पखंड होगा, वह गलत होगा, वह वहम होगा, वह तोमात होगा। साडे कोल कसवटी मौजूद है, बकायदा कसवटी मौजूद है। तो मैं इस करे असी मुसलमान घराने विच कबीर का जन्म है, पछड़िया जातां हिंदुस्तान दियां मुगलों के दबाव हेठ आके इस्लाम कबूल कर चुकियां सन, उसे घराने विच कबीर का जन्म है, सदने का जन्म है, वीखण का जन्म है। बाबा फरीद जद्दी मुसलमान ने, ये पीढ़ी दर पीढ़ी मुसलमान ने, क्योंकि इन्हां दे जिहड़े बजुर्ग ने पिछों अफगानिस्तान तो आए सन, आके मुल्तान विच रहे ने, ये जद्दी मुसलमान है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है मुसलमान है। बाबे फरीद की बहुत गहरी खोज सतगुरुदेव जी महाराज की बाणी, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी च मिलती है। तो भगतां की जिहड़ी बाणी है गुरु नानक ने आप इकत्र की और ये पोथी साहब का रूप कहलाई। पोथी साहब न गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की शकल दिती गुरु अर्जन देव जी ने। इधर गुरु अर्जन देव जी उचारण पे करते हैं, इधर भाई साहब भाई गुरदास जी लिखी जाते हैं। उस बीड़ का नाम जिन्हों भाई गुरदास जी ने लिखे है कि गुरु अर्जन देव जी महाराज ने उचारण किया है, उन्होंने कहने करतारपुर वाली बीड़ अजे भी प्रकाशमान है करतारपुर। यह बीड़ जो भीरमल तक पहुंची तो साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने मंग की बीड़ देव सानू असी इस दे उतारे कराने ने, अस्थाना विच इसका प्रकाश होगा। धीरमल इनकारी हो गया, नहीं देनी, जे वाकई तुसी दसवें गुरु नानक हो ते अवतार हो आप उचारण कर लो, असी नहीं देनी। गल बड़ी लंबी चौड़ी है, संक्षेप विच छोटे रूप विच मैं अर्ज करता पिया। दमदमे साहब विच साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बैठ गए, मनी सिंह नूं हुक्म कीता लिख, तो कागज लिया के रखे गए, मनी सिंह लिखते गए, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उच्चारण करते गए। गालबन 3-3.5 महीने लगातार गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उच्चारण करते गए, भाई मनी सिंह लिखते गए। उस बीड़ का नाम पै गया दमदमे साहब वाली बीड़। आ जी प्रकाशमान है इनू कहने दमदमे साहब की बीड़, ये करतारपुर की बीड़ का उतारा नहीं है। करतारपुर की बीड़ जी है उस गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज की रचना नहीं है। गुरु तेग बहादुर साहब जी की रचना जी जोड़ी है यह गुरु गोबिंद सिंह जी। ते करतारपुर साहब वाली बीड़ विच ओ थां खाली पई है जिथे हुण तुसीं गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज की बाणी वेख लो, कदी जाके दर्शन करना, वह थावां खालियां पईआं। उस थावां की पूर्ति कीती गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने, बीड़ तैयार हो गई, दमदमे साहब की बीड़ कहलाई गई। कहण तो मेरी मुराद है कि 200 साल बाद लिखी गई कुरान, 500 साल बाद लिखी गई बाइबल, 1500 साल बाद लिखे गए वेद, 100 साल बाद कृष्ण दे बोल जड़े गीता वो लिखे ऋषि वेद व्यास ने। बड़ा फर्क पै गया उन्हां च, एक साल दे च ही फर्क पै जाएगा किसी की गल, एक साल बाद लिखो फर्क पै जाएगा, ते 1500 साल बाद लिखो, 500 साल बाद लिखो कितना फर्क पै जाएगा। हू बहू ओरिजिनल अगर बाणी कोई ग्रंथ जगत विच मौजूद है तो सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने। सिख जगत में इस गल का माण है, बाकी किधरे थानू नहीं मिलेगा, सब कुछ मिश्रित मिलेगा, सब कुछ मिक्स हो गया। कोई बहुत सारिया ऐसिया गल्ला ने तो सच्चाई ते पूरिया नहीं उतरदिया। वेदां दे च भी बहुत सारिया ऐसिया गल्ला ने जो बचे आदियां ने, ते खिमा करनी कुरान दे च भी बहुत कुछ ऐसा है जो सच दे उते पूरा उतरदा ही नहीं। मैं एक दिन 13 सफे उसके जद पढ़े, मौलवी अब्दुल गनी ने उसका तर्जमा किया, तो मैं हैरान हो गया कि मैं कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ता पिया या बूचड़खाने की कथा पिया पढ़ना। उस विच लिखिया सी कि जिहड़ा हाजी आवे हज करन वास्ते वह जरूर कुरबानी दे, पर कुरबानी देन लगिया उन्हों ख्याल करना चाहिए बैल लंघना नहीं होना चाहिए, बकरा काणा नहीं होना चाहिए, ऊठ लंघना नहीं होना चाहिए, वो जिसम के उत्ते दाग ना होवे, ਉੱਥੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਉਹ 13-14 ਸਫ਼ੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਠੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਹਦੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਚ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੂਚੜਖਾਨੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੁਛ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੁਛ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੁਛ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 1500 ਸਾਲ ਜੋ ਲੰਘੇ, ਕੁਛ ਖੋ ਗਿਆ। 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੀਤਾ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਕੁਝ ਖੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਣ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾ ਖੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੋੜੀ ਗਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਗਿਣਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਗਿਣਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਥੱਲੇ 3-3 ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਇਹ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਨੰਬਰਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਹੈ, 15ਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ 20ਵਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਇਹ ਚੱਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ 1ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਇਹ 4ਥਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਾਂ 5ਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ 4ਥਾ ਜੋ ਹੈ 6ਵਾਂ ਹੈ। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਣਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਗਿਣਤੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਗਿਣਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪਦ ਕਿਤਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਧਾਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਘਟਾਵੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗਿਣਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ, ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਗਿਣਤੀਆਂ 3-3 ਚੱਲਦੀਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਸੁਧਾਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਲਿਖ ਸੁਧ, ਇਹ ਸੁਧ ਕਰ ਛੱਡੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਧਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦੀਆਂ। ਇਤਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬੀੜ ਲਿਖਾਈ, ਇਤਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬੀੜ ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚ ਲਿਖਾਈ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਛ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਛ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ? ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ? ਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ? ਵੱਖਰੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਸਭ ਹੂੰ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਏਕ ਰੂਪ ਕਿਨ ਹੂੰ ਪਹਿਚਾਨਾ, ਜਿਨ ਜਾਣਾ ਤਿਨ ਹੀ ਸਿੱਧ ਪਾਈ, ਬਿਨ ਸਮਝੇ ਸਿੱਧ ਹਾਥ ਨਾ ਆਈ। ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ, ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ। ਕਈ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਸਭ ਹੋਂ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਏਕ ਰੂਪ ਕਿਨ ਹੋਂ ਪਹਿਚਾਨਾ, ਜਿਨ ਜਾਣਾ ਤਿਨ ਹੀ ਸਿੱਧ ਪਾਈ, ਬਿਨ ਸਮਝੇ ਸਿੱਧ ਹਾਥ ਨਾ ਆਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਕਿ 10 ਇੱਕ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ, ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵੱਖ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਹੇ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਗੱਲ ਸੁਣ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੋਲ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, अकाल पुरख की गल है। गुरु ग्रंथ साहब इतिहास नहीं है। तुसी लभना चाहो गुरु नानक का जन्म कदों होया, किथे होया, उन्होंने माता पिता का की नाम से, उन्होंने औलाद का की नाम से, उन्होंने पत्नी का की नाम से, गुरु ग्रंथ साहब नहीं लिखा, बिल्कुल नहीं लिखा। किहड़े शहर विच ओ प्रगट होए, कदों ओ प्रगट होए नहीं लिखा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कदों प्रगट होए, किहड़े शहर विच प्रगट होए, उन्होंने की कारनामे किए, उन्होंने पत्नी का की नाम से, उन्होंने बच्चे किन्ने सन, गुरु ग्रंथ साहब विच नहीं लिखा। गुरु ग्रंथ साहब इतिहासक ग्रंथ नहीं है, यह ब्रह्म की बाणी, अकाल पुरख की बाणी है। जैसे में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वेला। गुरु गोबिंद सिंह कह लगे, मनी सिंह, यह ब्रह्म की विचार है, अकाल पुरख दे बोल ने, इहदे च मैं अपने बचन नहीं दर्ज करने। भई क्यों, थोड़े बचन अकाल पुरख दे बचन नहीं ने? साहब कहंदे ने, गल इतनी है कि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ब्रह्म की बाणी, ब्रह्म की कथा, ते मैं कुछ अपनी कथा भी लिखी है। अपनी विचित्र नाटक दे गुरु गोबिंद सिंह जी की अपनी कथा। अब मैं अपनी कथा बखानो, तप सादत जहे विद मोए आनो, इतिहास है वो, सारा इतिहास है, अपनी कथा। साहब कहना, मैं अपनी कथा परमात्मा की कथा दे नहीं लिखना, ये बराबरी हो जाएगी। किथे मेरी कथा, किथे रब की कथा। मनी सिंह सवाल करता, पातशाह तुसी अपनी कथा आप क्यों लिखते? राम की कथा तुलसी ने लिखी, वाल्मीक ने लिखी। श्री कृष्ण की कथा ऋषि वेद व्यास ने लिखी, कवि निरोत्तम ने लिखी, सूरदास ने लिखी। थोड़ी भी कोई कथा लिख देगा, थोड़ा जीवन चरित्र भी कोई लिख देगा, तुसी अपनी कथा आप क्यों लिख दे? तो पता थे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की कहते हैं, मनी सिंह, राम की कथा जो तुलसी लिखण बैठा है, तो लिखद्या लिखद्या उसने राम नू भगवान कह दिता है। श्री कृष्ण की कथा सूरदास ते निरोत्तम जद लिखण लगा है, व्यास जद लिखण लगा है, तो लिखद्या लिखद्या उसने कृष्ण नू भगवान कह दिता है। मैनू डर लगता है, मेरी आत्मा कंबदी है, कोई सिख मेरा इतिहास लिखे तो बहुती श्रद्धा दे आ जाए तो मैनू भगवान कह दे, मैनू रब कह दे, मैनू गवारा नहीं होगा, तो मेरे सिद्धांत तो उल्ट गल होगी, यह गुरु नानक के सिद्धांत तो उल्ट गल होगी। इस वास्ते मैं अपनी कथा आप लिखना, मैं जगत नू दसना चाहना मैं कौन हाँ। मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। और साफ कह दिता, जो हमको परमेश्वर उचर हैं ते सब नरक कुंड में पड़े। जिहड़ा मैनू परमात्मा आखेगा, मैनू रब आखेगा, कुंभी नरक विच जाएगा। मैं तो उहदा सेवक हाँ, मैं तो उहदा दास हाँ, मैं भगवान नहीं हाँ, मैं परम पुरख नहीं हाँ, मैं रब नहीं हाँ, मैं रब की गल करन वाला, रब का मार्ग दसन वाला, रब दे मार्ग ते तोरन वाला, मैं रब नहीं हाँ। ते जिहड़ा मैनू रब आखेगा, कुंभी नरक विच जाएगा। इन्नी करड़ी गल कह दी। इस वक्त हिंदुस्तान के 84 रब मौजूद ने, बने भगवान मौजूद ने। तो साहब उत्थे कह लगे, किधरे कोई श्रद्धा विच आवे ते किधरे मैनू रब कह देवे, ये मैनू गुआरा नहीं होगा, ये मैनू कबूल नहीं होगी गल। इस वास्ते मैं अपनी रचना अलग लिखे हाँ, उहदे च इतिहास है। तो आप सुन के हैरान होवो कि दसम ग्रंथ विच बहुता इतिहास है। बंगाणी का युद्ध है, जिहड़े युद्ध सतगुरां ने लड़े ना, सारे जंग के हालात ने। फिर अपनी जीवन कथा है, ब्रह्म की विचार, अकाल पुरख की विचार थोड़िया बाणिया दे ने, जिन्हों असी जाप साध कहने, जिन्हों अकाल उस्तद कहने, या थोड़ा जिहा ज्ञान प्रबोध कहने, बाकी सारी बाणी दे इतिहास है। इतिहास चलता है, इतिहासक कथा चलती है। जो जो सतगुरां ने किया, जिहड़े जिहड़े जंग लड़े ने, वह सब कुछ उहदे जो है मौजूद है। तो मैं उस कर लिया सी, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी विच, इस परपंच में साचे नाम की वडाई, मत को धरो गुमान, रंचक मात्र भी गुमान ना करो। ए सच्चे नाम की वडियाई है, परमात्मा की जो है कथा। तो हुण गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की जिहड़ी बाणी है, यह सानू दसदी है कि मनुख ने पहुंचना है सच तक। किवें पहुंचे? गुरु नानक देव जी महाराज कहना, गल वो शुरू करे धर्म खंड तो, फिर ज्ञान खंड, फिर शर्म खंड, फिर कर्म खंड, पहुंचेगा सचखंड। सनातनी ऋषि कहने ने प्रथम कर्म कांड, फिर उपासना कांड, फिर ज्ञान कांड। मोहम्मद साहब कहने ने पहले शरीयत, फिर तरीकत, फिर मार्फत, फिर हकीकत। हुण इन्हां सारियां गल्लां नूं मैं खोलां तो मैं देखदा पिया समा हो गया। इस वास्ते चूंकि तुसीं दिन भर काम करना है ते आपां ते घंटा कथा करके फिर वेले ते सारियां नूं निकम्मा थोड़ी करी आपां ते आ निकम्मे। इस वास्ते बार बार ख्याल आउंदा है कि थोड़े किरत विच फर्क ना पै, थोड़े समय विच मैं फर्क ना पावां। यह जिहड़ी गल मैं आरंभ कीती है इहनूं कल मैं फिर शुरू करांगा ताकि साडे ज़ेहन विच गल इक बैठ जाए कि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सानू कित्थे पहुंचाना चाहते। सच खंड वसे निरंकार, असी पहुंचना है सच तक, लीन होना है सच दे, जुड़ना है सच दे। ते सच दे जुड़िए की करिए, साहब कहने पहले धर्म खंड, फिर ज्ञान खंड, फिर शर्म खंड, फिर कर्म खंड। ये चार पड़ाव ने इथों लंघना है ते पंजवां पड़ाव है सच खंड। इसकी विचार सुनद भी फैसला करना कि असी कितने खड़े हैं, धर्म खंड खड़े हैं, ज्ञान खंड खड़े हैं, शर्म खंड खड़े हैं, कर्म खंड खड़े हैं, या सच खंड पहुंच गए हैं, या पांच खंडा किसी भी खंड से नहीं खड़े। तो जे किसी खंड से भी नहीं खड़े तो असी गुरमत मार्ग के पांधी नहीं हाँ, असी धर्म के पांधी नहीं। ब्रह्मे ने बड़े जोर नाल गल कह दी, पहले कर्म कांग, फिर उपासना कांग, फिर ज्ञान का। ज्ञान तक जो पहुंच गया रब तक पहुंच गया, हकीकत तक जो पहुंच गया खुदा तक पहुंच गया, सच तक जो पहुंच गया वह अकाल पुरख तक पहुंच गया। यह फैसला साहिब गुरु नानक देव जी महाराज का, कल इसका थोड़ा जि निर्णा कर देंगे क्योंकि हुण मैं गल ली तो घंटा डेढ़ घंटा मैं थोड़ा होर लै जावांगा। इस वास्ते समय की उलंघना ना करा, भुल चुक लई खिमा की याचना, और उम्मीद है आप कल इस तरीके वक्त सिर आ के दर्शन दोगे। ते मैं इस गल नूं मैं छेड़ बैठा, रात का वक्त सी, चल पई गल ते समा इस दे चीज है लंघ गया। तो कल मैं फिर इसका निर्णा थोड़े सामने रखांगा, और मैं इस विचार नूं बड़ा जरूरी समझदा क्योंकि कम से कम सानू इतना ते पता होवे किहड़ी स्टेज ते खड़े हैं। स्टेजां ने जिवें हुण कई कहण लग पैंदे ने कि कबीर नूं 90 दफा दर्शन होए खुदा दे, नामदेव नूं 70 दफा होए जी, बाबे फरीद नूं 101 वारी दर्शन होए। ते मैं कहना दर्शन ते इक्को ही दफा हो जाण बस हो गए, फिर ते बंदा लीन हो जांदा है। दरिया सागर विच लीन हो जाए, सागर विच समुंदर विच ते लीन हो गया बस खत्म। ये थोड़ी कहना ये दरिया 1000 दफा लीन होया जी, ये दरिया 70 दफा लीन होया जी, ये दरिया 50 दफा लीन हो, तो कहना ही गलत है। जिहदी सुरत परमात्मा विच लीन हो गई सो हो गई, वह तो समाधि च लग गए, उन्हें दर्शन हो गए तो हो गए, हुण उसने बिछड़ना थोड़ी है। पर बच्चियां वालियां भी कहानियां ने, इस स्टेजां ने भी इनू 50 दफा दर्शन होए, इनू 60 दफा दर्शन होए, तो 60 दफा दर्शन होए कोई रब व्यक्ति है जो उन्हें बार बार देखेगा? एक दफा जिहड़ा वेख लवे, एक दफा जिहड़ा जुड़ जाए वह नहीं जुड़ता। मिलिया होए ना बिछड़े जे मिलिया, साहबां दी बाणी दा फैसला, जिहड़ा मिल गया नहीं बिछड़ता, जिहड़ा जुड़ गया नहीं टुटता, जिन्हों हो गए दर्शन वह नहीं टुटता। तो यह सारिया स्टेजा ने जो साहब गुरु नानक देव जी महाराज जानकारी कराएंगे तो उस तो पता भी चलेगा कि आप कितने खड़े हाँ। पहले विचार थोड़े सामने रखांगे, अज इत्थे समाप्ति, भुल चुक लई खिमा की याचना, गज वज के फतेह प्रवान करनी।